उसके अलावा बेशी और जो न्यूट्रोफिलिक डर्मेटोसिस है ना, ये क्लिनिकल्स में तो शॉर्ट केसेस में इम्पॉर्टेंट है ही। उसके अलावा बेशी का लॉन्ग केस भी आपको आ सकते हैं। तो आप इसे अंदाज़ा कर लें कि ये जो है वो थ्यूरी, क्लिनिकल स्लाइड्स, शॉर्ट लॉन्ग केस, ऑल सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने रिपीटेडली इसको करना है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इसके थ्योरी में आपने इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मतलब जो जितनी अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं ना, आप इसको प्रिपेयर कर लें। ख़ासतौर पे पायोडर्मा गैंग्रीनोजम, स्वीट और बेशे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। उसके अलावा इम्यूनोबुलस डिजीज़ ओवरऑल ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी वाइज भी, क्योंकि इसमें जितने भी इसके आपके एसोसिएशंस, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज़, इन्वेस्टिगेशंस, मैनेजमेंट प्लान, और लॉन्ग केस में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि इम्यूनोबुलस डिजीज़ ना हो। वार्ड्स भी भरे होते हैं आपके पास जो है वो लॉन्ग केस में, ये इम्यूनोबुलस चाहे वो पेम्फेगॉइड ग्रुप से या पेम्फिकस ग्रुप से, ये आते ही हैं। तो इसको आपने आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये। उसके अलावा बाकी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स ओवरऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मेटाबॉलिक में आपके पास जो है वो क्यूटीनियस अमाइलोइडोसिस, म्यूसिनोसिस से लेके आपने इसको पोफाइरियाज, ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। जैनतूमास के शॉर्ट केसेस एग्जाम में आते रहे हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैनतूमास में आपने ये करना है ना कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है कि जिसमें कौन सी मेन जो उसकी टाइप्स हैं, टाइप 1 से लेके टाइप 4-5 तक, कौन सी टाइप ऑफ हाइपर डिसलिपिडीमियाज हैं, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। बाकी इसमें जो न्यूट्रिशनल वाला है उसमें भी आप अपनी कोशिश कर लें कि बिल्कुल पॉइंटर्स में अपने नोट्स लिख लें और इसको जो है ना एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जेनेटिक्स में मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ जो कि थ्योरी वाइज इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 65 इक्थायोसिस, पीपीकेज, डेरियर हेले हेले, एक्टोडर्मल डिस्प्लीजियाज, इनहेरिटेड हेयर डिसऑर्डर्स में कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लाइक जो ट्राइकोथाइड डिस्ट्रॉफी, मेंकीज, पाइलाई टॉर्टाई, ट्राइक्रोसिनोडोज एंड वेजिनेटा, कौन से कंडीशंस में होता है, सो टेबल टेबलेटेड फॉर्म में कर लें ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह नेल्स या नेल ग्रोथ वगैरह में मतलब नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन बस आपको मेन मेन बातें इसमें पता होनी चाहिए। बाकी फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ पिगमेंटेशन, ब्लिस्टरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलेजन इलास्टिन डर्मल मैट्रिक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर क्यूटेनियस वास्कुलेचर वाला, एडिपोज टिश्यू, कंजेंटल नेवाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आपको मेन मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर पोइकिलोडर्मा, डीएनए रिपेयर डिसऑर्डर्स, प्रीमेच्योर एजिंग, हेमाटो न्योप्लास्टिक सिंड्रोम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज़ में, बस कुछ मेन मेन जो चीज़ें हैं, जो मेन सिंड्रोम्स हैं जो यूजुअली आती हैं पेपर्स में, बस वो। और इम्यूनो डिफिशेंसीज में भी आपको जो है ना वो बस कुछ एक और सिंड्रोम्स का आपको पता होना चाहिए, जैसे जॉब सिंड्रोम सब हमारे क्लिनिकल स्लाइड्स में भी आया हुआ था। तो इसमें से जो है वो जो इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम्स है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से वाले सिंड्रोम्स जो है वो मेनली रिपीटेडली आ रहे हैं एमसीक्यूज़ में। तो जो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ईटास में, इसकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है। अगर उसको आप ज़्यादा करेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि जब आप सिनेरियो पढ़ते हैं आप कैसे पिक कर सकते हैं कि कौन से इम्यूनो डेफिशिएंसी की बात है।